الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے استقبال رمضان. جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں, اور مہمان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے, آپ باقاعدہ بلاتے ہیں, اور ایک ہوتے بن بلائے مہمان. اب بن بلائے مہمان وہ تو وبال جان, یعنی جن کو دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ بلاتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں, سجاتے ہیں, اور تیاری ویسی ہوتی ہے جیسا مہمان ہوتا ہے. جتنا قابل احترام, جتنا اس کا مرتبہ, جتنا مقام, ویسی تیار. اب ایک دوست کو آپ نے بلایا, اس کو بلا کے ڈائننگ روم میں بٹھا دیا, کھانا کھلا کے روانہ کر. استاد کو بلایا تو اس کا مقام اور ہے, پیر و مرشد کو بلایا تو مقام اور ہے, اتنی ہی تیاری ہے, ویسے ہی اہتمام. تو رمضان المبارک بھی ایک مہمان ہے جو کچھ دنوں کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, اور سال میں ایک مرتبہ یہ مہمان آتا ہے. اور یہ ایسا مہمان ہے جو بہت سخی ہے. یہ جب آتا ہے تو بہت کچھ دے کر جاتا ہے. اور سخی بھی دو قسم کے ہیں, ایک سخی وہ ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے, اور ایک سخی وہ ہے جو گھر میں آ کر دیتا. بیت اللہ بھی سخی ہے, رمضان المبارک بھی سخی. بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے, اور رمضان المبارک وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر دیتا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی نا. کسی نے کہا ہو کہ جی اسلام آباد میں رمضان ہے, وہاں چلے جائیں وہیں ملے گا. نہیں, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی, یہیں آ گیا. ایسا سخی جو گھر آ کر دے رہا ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اور وہ اپنے فیوز و برکات لے کر لٹانے کے لیے آ گیا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کے پورے پورے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے فیوز و برکات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. وہ تو اپنی سخاوت میں بے مثال ہے, وہ تو سب کچھ لے کر آ رہا ہے اور دے کر جائے گا, لیکن اب اس سے لینے کا طریقہ کیا ہے, وہی آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. استقبال رمضان کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سی تقاریب ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, محافل کی جاتی ہیں. رمضان المبارک آ رہا ہے, اس کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن یہ تیاری بھی دو قسم کی ہے, ایک ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. ظاہری تیاری تو سب کرتے ہیں, باطنی تیاری بہت کم لوگ کرتے ہیں. ظاہری تیاری ہر آدمی کر رہا, رمضان سے پہلے روح افزا کی بوتل لے کے رکھ لی, شربت پینا ہے, کسی نے اور کوئی جو اس کی پسند کا شربت ہے اس کی رکھ لی, بیسن رکھ لیا, پکوڑے بنانے ہیں, پھلکیاں تلنی ہیں, اور ایک دن پہلے کھجلا پھینیاں رکھ لی. یہ کیا ہے, یہ ظاہری تیاری, یہ سب کرتے ہیں, اس میں کوئی تخصیص نہیں اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں. لیکن اس سے منع بھی نہیں, ہم منع بھی نہیں کرتے کہ آپ نہ کریں, ظاہر ہے ضرورت ہے. اور رمضان کی برکتیں ایسی ہیں کہ رمضان سے پہلے اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا جاتا. کہنے کو تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کچھ نہیں کھایا, روزے رکھے, لیکن افطار میں اتنا اہتمام और इतना खाना पीना के खाने की जरूरत ही नहीं, उसके बाद फिर भी खाना खाते। इसी तरह शहरी में भी खजला है, फेनिया है और फला है, फला चीज है, ये सारी चीजें। खैर वो रमजान की बरकत है, उसमें भी एतदाल होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि हम अहले तरीकत अहले मोहब्बत हैं, हमें ये जाहिरी तैयारी तो करनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बातनी तैयारी भी करनी चाहिए। कि खाना पीना ये सब हमारे जाहिर के लिए, हमारे जिस्म के लिए, खजला फेनिया ये सब हमें सहरी में खानी है, कचालू जो है पकौड़े ये हमें इफ्तार में खाने हैं, ये सारी चीजें हमने अपने पेट के लिए कर ली कि हमें ये करना। लेकिन इससे बढ़कर तैयारी जो हमारी रूह की तैयारी है वो क्या है? रूह की तैयारी यह है कि अभी रमजानुल मुबारक शुरू नहीं हुआ, आप पहले से नियत कर लें कि इस महीने में मुझे पूरे महीने इंशाअल्लाह ताला तरावी पढ़नी। क्यों? लोगों की यह है कि एक अजीब कैफियत हो गई, 5 रोजा ढूंढ लो, 6 रोजा ढूंढ लो, 10 रोजा ढूंढ लो और उसके बाद फारिग, फिर हमें जरूरत ही नहीं। अगर इसके पूरे पूरे फ्यूज़ो बरकात हासिल करने हैं तो आप ये नियत कर लें कि मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे रमजान तरावी पढ़ूं। और इसकी अहमियत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है, सरकार ने फरमाया आसमान में एक जगह है हजीरतुल कुद्स के नाम से, वहां पर फरिश्ते रहते हैं और जब यह महीना शुरू होता है रमजानुल मुबारक का, वह फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और जो लोग तरावी की जमात में शामिल होते हैं, बाकायदा पढ़ते हैं रोजाना, फरिश्ते इस जमात में शामिल होते हैं। सरकार ने फरमाया जिसने उनमें से किसी को छू लिया फरिश्तों को, या फरिश्तों में से किसी ने उस इंसान को छू लिया, वो ऐसा नेक और सईद हो जाता है कि कभी भी बदबख्ती उसके करीब नहीं आती। ये इसकी फजीलत। और इसी वजह से सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह हदीस सुनी, आपने इसका बाकायदा एहतमाम फरमाया। गुज़िश्ता नशिस्तों में हम बयान कर चुके हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में बइख्तिलाफ़े रिवायत 2 या 3 मरतबा तरावी की जमात हुई, सरकार ने खुद कराई। नमाजियों की इतनी कसरत हुई कि मस्जिद नबवी में जगह नहीं रही, तमाम सहाबा मौजूद लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम काशाने नबुवत से बाहर तशरीफ नहीं लाए। सारी रात सहाबा बैठे रहे, गौर कीजिए 1-2 घंटे नहीं, सारी रात के अभी हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और इस नमाज तरावी की इमामत करेंगे। सुबह हो गई, फजर की अजान हुई, काशाने नबुवत का दरवाजा खुलता है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुसल्ला इमामत पर, नमाज फजर की इमामत फरमाई और नमाज फजर के बाद फिर रौनक अफरोज हुए। फरमाया सुनो, तुम्हारी रात की हालत मुझसे पोशीदा नहीं थी, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं था, मैं जानता था तुम किस जौक और शौक से तरावी पढ़ने के लिए आए थे। मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं इस जौक और शौक को देखकर अल्लाह तबारक व ताला इस नमाज को फर्ज ना कर दे और आगे चलकर तुम इसको अदा करने से आजिज हो जाओ, इस वजह से मैं नहीं आया। बार सूरत ये हदीस शरीफ जो इससे पहले हमने बयान की, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना। अच्छा, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के जमाने में 2 या 3 मरतबा हुई, उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, लोग इसी तरह मुतफर्रिक तौर पर पढ़ते रहे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, लोग मुतफर्रिक तौर पर पढ़ते रहे, 2 इधर हैं 2 इधर हैं 2 इधर, जमात के साथ नहीं। फिर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को बुलाया, उनसे मशवरा किया कि इस जमात तरावी की जब इतनी फजीलत है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनमें से किसी ने छुआ या इंसानों में से किसी ने उसको छू लिया, वो नेक और सईद हो जाता है कि बदबख्ती उसके करीब ही नहीं जाती, तो हमें चाहिए हम बाकायदा एहतमाम करें। सहाबा ने इससे इत्तेफाक किया, आपने बुलाया हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ते थे, आवाज उनकी बहुत खूबसूरत, हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे। फरमाया उबई तुम हमारे इमाम बन जाओ, हम सब तुम्हारे मुक्तदी बन जाएं। वो इमाम बन गए سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پہلی مرتبہ باقاعدہ تراویح کی جماعت کا اہتمام ہوا، اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے، اور قیامت تک اس کا ثواب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں رمضان المبارک کی راتوں میں مسجد کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ تراویح پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، لوگ باجماعت تراویح کی نماز میں شامل ہیں. اپنے دستے مبارک اٹھائے، فرمایا اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ بالقرآن. اے اللہ، عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہا. تو اس جماعت کی بڑی اہمیت ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، چار روزہ میں پڑھ لیں گے اس کے بعد غائب. خاص طور پہ جو تاجر حضرات ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کو کچھ خرید و فروخت کرنی ہے، چھ روزہ میں پڑھ لیں گے اس کے بعد چھٹی. نہیں، کوشش کیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں پورے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھوں گا. آپ نیت کر لیں گے، ثواب ابھی سے جاری ہو جائے، نیت کا ثواب شروع ہو جاتا. اسی طرح رمضان المبارک کے پورے روزے میں رکھوں گا، یہ ابھی سے نیت کر لیں. عام طور پہ دیکھا گیا لوگ روزے ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اصل میں یہ سب ہے ماحول کا اثر. اپنے گھروں میں ماحول بنائیے، اپنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے بتائیے کہ دیکھو یہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا قیامت میں جواب دہی ہے، گناہ ہے. قصدن چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی خیال ہی نہیں کرتے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں. کیا آپ نے روزہ رکھا نہیں، وہ آج میری طبیعت خراب تھی میں نے روزہ نہیں رکھا، آج میری آنکھ نہیں کھلی میں نے روزہ نہیں رکھا، آج مجھے بخار ہو گیا میں نے روزہ نہیں رکھا، معمولی بات. قرآن نے کہا وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، اس کے قضا بعد میں کر لو. اور سفر بھی کتنا آسان کہ جہاز میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اسلام آباد سے کراچی آ رہے ہیں، روزہ چھوڑ دیا کہ سفر میں رخصت ہے. ارے سفر میں رخصت ہے جو گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر دھوپ میں سفر ہوتا تھا، یہ تو معمولی سفر ہے. آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، اے سی میں آپ اتر گئے، نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے. ایسا سفر آسان سفر ہو تو اگر روزہ نہ چھوڑا جائے تو بہتر ہے. وہ صحیح ہے کہ اجازت ہے اپنی جگہ، لیکن آپ سفر بھی تو دیکھیں، نہ اس میں کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی صحبت ہے، نہ کوئی ایسی مشکل ہے، اتنی آسانی میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول وہ نہیں رہا. کسی کے سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، معمولی بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا، آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دیا، یہ سب غلط بات. اور اگر کبھی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جائے، آپ اس کی قضا کریں. فائدت من ایام اخر، قرآن نے کہا اس بات میں اس کی قضا ہے، لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں. تو آپ کیونکہ اہل طریقت، اہل محبت ہیں، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیے کہ رمضان المبارک میں ماحول ہی تبدیل ہو جائے، ماحول ہی تبدیل ہو جائے. سب کے سب پورے رمضان کے روزے رکھیں. جو مرد حضرات ہیں خاص طور پر، وہ یہ کوشش کریں کہ وہ تراوی کی جماعت میں شامل ہوں. پانچ روزہ، چھ روزہ، دس روزہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اب پانچ روزہ میں حیرت کی بات یہ کہ اتنی جلدی پڑھنا پڑتا ہے کہ آدمی کیسے پورا کرے گا، سوائے عالمون تعلمون کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب وہ رکعت کرے گا پھر خشوع خضوع کیسے رہے گا، آپ یہ بتائیے. تھوڑی دیر امام صاحب اگر رکعت لمبی کر دیں تو لوگ ٹانگیں ہلانا شروع کر دیتے، اور بہت سے تو سلام پھیرتے کہتے ہیں کیا ہوا حافظ صاحب، خیریت ہے، ہم بھی پیچھے کھڑے ہیں، ذرا ہمارا بھی خیال کیجیے، آپ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو چھ روزہ تو ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں ایک رکعت، اس سے کم میں تو نہیں ہوگی نا، تو خشوع خضوع تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. خیر بہرحال وہ ان کی اپنی لاجک ہے جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ورتر القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو کہ لفظ سمجھ میں آئے، آپ کو پتہ چلے. اس لیے کہ یہ وہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب. کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں. تو اس لیے ہر ہر حرف پر دس نیکی مل رہی، تو خالی آپ سماعت کر رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا، तो जो पढ़ रहा होगा उसको कितना सवाब मिले। दूसरी बात यह कि अभी से आप ये अहद कर लें, ये नियत कर लें कि मैं इस रमजान मुबारक में एक कलाम पाक में मुकम्मल करूं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं। जो लोग देख के, अक्सर लोग देख के ही पढ़ेंगे, जाहिर है सारे हाफिज कुरान तो नहीं है, कोई रवानी से पढ़ता है, कोई आहिस्ता पढ़ता है, लेकिन आप पढ़ें। और इस सिलसिले में भी एक हदीस शरीफ है जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस, जिसका मफहूम यह है कि एक आदमी अटक अटक कर पढ़ता है, यानी रुकता है फिर पढ़ता है फिर, और एक रवानी के साथ पढ़ता है। सरकार ने फरमाया जो रवानी के साथ पढ़ता है उसे एक अजर मिलेगा, और जो अटक अटक कर पढ़ता है उसे दो अजर मिले। क्यों? इसलिए कि उसके पढ़ने में परेशानी है फिर भी पढ़ रहा, मुश्किल है फिर भी पढ़ रहा, यह मसला है। तो आप उसका एहतमाम ये करें कि यकुम रमजान से लेकर 29 रमजान तक ये आप हिसाब लगाएं, 30 रमजान का हिसाब ना लगाएं। अगर चांद हो गया तो जाहिर है रमजान मुबारक खत्म हो जाएगा। तो ये हिसाब करें कि 29 रमजान को आपका एक कलाम पाक मुकम्मल हो जाए, ये बहुत अहम चीज है। जिंदगी में मसरूफियत है, मशगूलियत है, हम सारे साल अपने कामों में लगे रहते हैं। वैसे तो कुरान की तिलावत हर रोज ही करनी चाहिए, और उसका तरीका भी हमने आपको एक दफा बताया था कि एक सफा रोज आप पढ़ें। गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने बताया था कि जितने भी मुरीदीन हैं मर्द या औरत, एक सफा रोज, 10 सफे एक पारे में होते हैं, 10 दिन में एक पारा मुकम्मल, और आपने आराम से पढ़ा तो 20 दिन में हो गया, या ज्यादा पढ़ा तो उससे पहले हो गया। इसी तरह आप उसमें निशानी लगा के रख दें, उसको बंद कर दिया, दुआ कर ली, दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ी, फिर लेके बैठ गए। एक सफा लाजिम कर लें कि आपको पढ़ना जरूरी है, तो आप देखें कि कितनी जल्दी कलाम पाक मुकम्मल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके फ्यूज़ बरकात भी हासिल होंगे, घर में भी रहमत होगी, बरकत होगी। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां से मीलों दूर भाग जाता। आज इसीलिए बरकत नहीं है, किसी को रोजगार की तरफ से परेशानी है, कोई जॉब की तरफ से परेशान है, कोई शादी की तरफ से, कोई किसी की तरफ से, मुख्तलिफ मसाइल, शैतान तो घर में ही घुसा बैठा है, कहां से रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। कुरान की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम कीजिए, फिर आप देखें कैसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती। तो आम तौर पर अगर मौका नहीं मिलता तो इस रमजानुल मुबारक में कम से कम हम ये नियत कर लें कि हम एक कलाम पाक मुकम्मल करेंगे, और उसका शेड्यूल आप अभी से तय कर लें। आप सहरी के बाद पढ़ें, सहरी से पहले पढ़ें, फजर के फौरन बाद पढ़ें, या ईशा के बाद, तरावी के बाद पढ़ें, कोई टाइम हो आप उसको एक टाइम मखसूस कर लें, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है और इतना पढ़ना है, और उसका हिसाब ये रखें कि 29 रमजान मुबारक को पूरा हो जाए। बल्कि ये भी हो सकता है कि उससे पहले ही मुकम्मल हो जाए, जो लोग रवानी से पढ़ते हैं वो उससे पहले ही मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चीज अपने जहन में सब रखें कि एक कलाम पाक मुकम्मल करना है। कितनी चीजें हो गई, अभी तीन चीजें हमने बताई, रमजान मुबारक के सारे रोजे रखने, नंबर दो तरावी पूरे रमजान, नंबर तीन एक कलाम पाक मुकम्मल करना है, नंबर चार है एतिकाफ। एतिकाफ जो है ये सुन्नत मौकदा अल किफाया है, मतलब अगर सरकार ने फरमाया सारे छोड़ दें तो सबके सब गुनाहगार हैं, लेकिन अगर कोई बैठ जाएगा तो पूरा मोहल्ला बरी हो जाएगा। खैर, अब तो ये है कि लोगों में शौक पैदा हो गया, और हम देखते हैं कि माशाल्लाह काफी तादाद में लोग बैठते हैं, बल्कि बैठने पे भी झगड़ा होता है, हर चीज में झगड़ा होना तो लाजमी, क्या नेकी का काम हो या बुराई का, नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, वो कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, भाई आप देखें गुंजाइश है या नहीं, अगर बैठने की गुंजाइश है तो आप बैठें, वरना ना बैठें, आप दूसरे भाई को टाइम दे दीजिए। और एक सबसे अहम चीज जो है जो समझने की, वो ये है कि नौजवान हजरात शौक में बैठ जाते, नहीं जी हमें इतकाफ में बैठना है, बस घर वाले भी खुश हो रहे हैं, मोहल्ले वाले भी, देखो नौजवान आदमी और कितना शौक है इसको इबादत का। अब जब बैठ गए, पहला दिन हो गया, दूसरे दिन से परेशानी शुरू। क्यों? अब जो शराइत है कि आप बाहर नहीं जा सकते, जो मस्जिद की हुदूद है उसका तायुन कर लें, बगैर उजरे शरई के उससे बाहर नहीं निकल सकते, जो जो सारी शराइत और कवायद हैं जब वो लागू होती हैं फिर परेशान होते। अगर मस्जिद बड़ी है तो टहलने की जगह भी है, और मस्जिद छोटी है तो और ज्यादा परेशान। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 10 दिन गुजारने मुश्किल। तो इसलिए जो लोग बैठे हैं वो इतिकाफ में भी पहले से अपना शेड्यूल तय कर लें, किस वक्त मुझे क्या करना है, कुरान करीम पढ़ना है, नवाफिल पढ़ने हैं, वज़ाइफ पढ़ने हैं, जो कुछ भी करना है आप पहले से तय कर लें। और उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है सिवाय पढ़ने के और सोने के। सोना ही है ना, और रोजे में तो सोना भी इबादत है और यही सबको पसंद है, ये बहुत आसान इबादत है। सो गए पढ़ के जी सोना भी तो इबादत है, यानी क्या तिलावत है कुरान तो इससे बढ़कर इबादत है, वो क्यों नहीं कर रहे, सो रहे हैं पढ़े। तो इसलिए जो लोग इतिकाफ का इरादा रखते हैं उनको ये चाहिए कि पहले से अपना शेड्यूल तय करें, मुझे इस टाइम पे ये करना है। 10 दिन आपके ऐसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। परेशान वो होते हैं कि जो खाली बैठते हैं, अब हम क्या करें। और इसमें सबसे बड़ा नुक्ता जो समझने का है मोतकेफीन के लिए वो ये है कि आप अपना शेड्यूल ऐसे तय करें कि आपको एक मिनट की फुर्सत ही ना मिले। और जब एक काम करते करते आप थक जाएं, इंसान की एक फितरत है कि एक ही काम करें ना तो थोड़ा सा उकता जाता है, परेशान हो जाता है। मतलब आप नफिल पढ़ने पढ़ते पढ़ते आप थक गए, आप अपनी मसरूफियत को चेंज कर दें, तब्दील कर दें। नफिल पढ़ते पढ़ते आप थक गए, आप थोड़ी देर बैठ जाएं, कुरान करीम उठाकर तिलावत शुरू कर दें, वो पढ़ते रहें काफी देर होगी, आप वो बंद कर दें, वज़ाइफ शुरू कर दें, अल्लाह समद पढ़ना शुरू कर दें, सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर दें, और कोई वजीफा शुरू कर दें, मसनून दुआएं हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दें, अपनी मसरूफियत को तब्दील कर दें, या दीनी किताबें रखें आप उसका मुताला शुरू कर दें, मसाइल की किताब आप रखें उनका मुताला शुरू कर दें। उस मसरूफियत को तब्दील कर देंगे, वक्त जाया नहीं होगा। हम क्या करते हैं, फजूल बैठे तो दो चार आदमी मिलकर बैठ गए बातें शुरू कर दें, और तुम्हारा इतिकाफ कैसे चल रहा है, तुमने क्या पढ़ा, वो कहते तुमने क्या पढ़ा, वो घर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, वक्त जाया होगा। दूसरा ये कि इसमें कम खाएं, ये भी अहम नुक्ता है मुतकफिन के लिए। बाद जगह तो इंतजाम होता है ना, तो आ रहा है माल तो खा रहे हैं डट के, उसमें अपने थोड़े से अपने पेट को भी देखना चाहिए। इसलिए कि इतिकाफ में चलना फिरना नहीं है, खाया फिर बैठ गए, फिर खाया फिर बैठ गए, तो बाद लोगों को बदहजमी भी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को उल्टियां हो गई, किसी को मोशन हो गए। तो इसलिए एतदाल की राह इख्तियार करें, कम खाएं, कम सोएं, ज्यादा वक्त इबादत में शुमार, क्योंकि दुनिया भी काम आपको करना ही नहीं, आप थक गए आप सो जाएंगे, और खुसूसन रात जो है वो जाकर गुजारिए। अब आपको सुबह ड्यूटी पे तो जाना नहीं है ना, आप पूरी रात गुजारिए, शबे कदरें भी उसमें शामिल हो जाएंगी, और शबे कदर के अलावा भी रमजान मुबारक की हर रात जो है वो रहमतों बरकतों वाली रात। इसीलिए बुजुर्गाने दिन तो पूरी रातों में जागते हैं, पूरे साल जागते हैं, क्यों, इसीलिए कि उनके लिए तो हर रोज रोजे ईद, हर शब शबे बरात, उनके लिए तो मसला ही नहीं है जागना। तो जो मोतकफीन हजरात हैं उनके लिए ये हिदायत ये है कि अगर हर रात जाकर गुजारें तो बेहतर है, फजर पढ़ के सो जाइए आराम, 3-4 घंटे 5 घंटे, जोहर तक लंबा टाइम है, आप आराम से सो जाइए, उसके बाद उठकर फिर अपने मामूलात शुरू कर लें। रात की जो इबादत है वो बड़ी मकबूल है। रात पहले भी हम बता चुके हैं, मेराज हुई रात में, नुजूल कुरान रात में, सरकार ने हिजरत फरमाई रात में, अल्लाह की तरफ से निदाएं बंदों के लिए रात में, ये सारी बातें रात में। मैं सोचने लगा कोई ना कोई राज जरूर है इस बात में, कोई राज जरूर है इस बात में। तो जो रात की इबादत है उसकी बड़ी अहमियत, जब बंदा अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है उस वक्त फिर खालिक कायनात अपनी रहमतें बरकतें उस पर नाजिल फरमाता, उसकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता करता। तो यह चीज भी अपने जहन में रखें, एतिकाफ अगर कोई इसका इरादा रखता है तो इन तमाम चीजों की पाबंदी करे, और अपने वक्त को उन लम्हात को जाया न करे, और ऐसा ना हो कि लोग समझें कि बेजार हो रहा। अल्लाह ताला माफ फरमाए, बहुत से लोगों को यही देखा कि वो बैठकर परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम क्यों बैठ गए, इधर जा नहीं सकते, उधर आ नहीं सकते, अगर गैलरी में खड़े हुए तो मौजिन साहब ने देख लिया, इमाम साहब ने देख लिया, फलाने देख लिया कि मियां तुम्हारा इतकाफ नहीं हुआ, चलो अंदर जाओ। फिर अंदर चले गए, फिर परेशान हुए तो फिर बाहर आ गए, फिर इधर गए उधर गए। क्यों आप घूम रहे? आप अल्लाह के लिए। और सरकार ने फरमाया मोतकिफ जब एतकाफ में बैठता है तो उसको एक हज और एक उमरे का सवाब, और बाज अहदीस में इससे ज्यादा भी सवाब। क्यों? उसकी कैफियत यह है कि जैसे कि कोई फकीर आकर किसी सखी के दर पर डेरा डाल देता है कि जब तू देगा तभी मैं टलूंगा वरना नहीं टलूंगा, यही मोतकिफ की कैफियत है कि वो अल्लाह के घर पे आकर डेरा डाल दिया उसने, मौला तू देगा राजी होगा तब मैं जाऊंगा वरना मैं जाऊंगा ही। तो ये कैफियत होनी चाहिए। अगर आपको इतकाफ में बैठना है या किसी साथी को बैठना है तो आप उसको ये बताएं, खुशू खुजू के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ये ना सोचिए माज़ अल्लाह की, खुदा न करे ये ऐसे एक बोझ है कि ये जल्दी से खत्म हो, हमारी आजादी खुल जाए और हम बाहर निकल जाएं। और ये कैफियत देखी और उससे अफसोस होता है, ये एक किस्म के इबादत का मजाक है। अगर आप नहीं कर सकते आप ना बैठे। 29 तारीख को सामान पैक करके रख दिया, आज से चांद होगा जरूर। क्या भाई अभी हो सकता है ना हो? नहीं नहीं आज होगा, आज होगा जरूर। दोपहर से ही सामान पैक करके रख दिया, घर भी फोन कर दिया सामान ले जाना आके। ऐसे बेजार होते हैं परेशान, अल्लाह ताला माफ करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इबादत करें उसके पूरे एहतमाम के साथ, खुशू खुजू के साथ करें और दुआ करें कि मौला इस इबादत को कबूल फरमा ले। कितनी चीजें हो गई? चार चीजें हो गई, सही है। यह आप शुक्र है कि आप हजरात को याद है। पांचवी चीज ये कि शबे कदर, वैसे तो सारी रातें जाकर गुजारनी चाहिए लेकिन जाहिर है हर एक की मसरूफियात है, किसी को जॉब पे जाना है सुबह उठकर, किसी को दुकान पे जाना है। दुकान वाले तो खैर 10 बजे से पहले 12 बजे से पहले तो जाते नहीं, आराम से उठते हैं फिर जाते हैं वो करते हैं। खैर बहरहाल, लेकिन शबे कदर ये जाकर गुजारें, इसमें जो है इबादत की बड़ी अहमियत है। इसमें आप नवाफिल पढ़ें और 1000 मरतबा अस्तगफार जरूर पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूब इलैह, 1000 दफा। और 40 नफिल कोशिश करें कि हो जाए कम से कम, ज्यादा हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं। और उसका तरीका यह है कि 2 रकात की नियत बांधकर सना और सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास हर रकात में पढ़। तो इस तरह ये 40 नफिल पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इसका भी बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। बुजुर्गान दीन से ये नवाफिल भी मनकूल है। कलाम पाक की तलावत भी उसमें कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अगर कहीं शबीना है तो आप उसमें शिरकत कीजिए, वहां आप हाथ बांधकर खड़े हो जाएं, पीछे बैठ जाएं। कुरान का सुनना जो है, सिर्फ सुनना, ये भी इबादत। आप इस नियत से गए कि मैं शबीना सुनने के लिए जा रहा हूं, उसमें भी आपको अजर सवाब मिलेगा। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखें। कहने का मकसद ये है कि रमजानुल मुबारक की असल तैयारी रूह की तैयारी है, जिस्म की तैयारी नहीं है। जिस्म की तैयारी तो सभी लोग कर लेते हैं, इफ्तारी का सामान रख लिया, सहरी का सामान रख लिया, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, रमजान में निकलना मुश्किल है, रोजा होगा, ये होगा। और हैरत की बात यह है, रोजे को इतना हवा बना दिया कि पता नहीं क्या है। लोग पूछते रमजान में आप बैठेंगे? मैंने कहा नहीं, खड़े रहेंगे, बैठेंगे यानी मरीजों को देखेंगे। भाई देखेंगे तो इसमें क्या मसला है? रोजा रख के आदमी कोई काम नहीं कर सकता। बहुत से लोग पहले से सामान ला के रख दो, रोजे में जाएंगे लेने के लिए। बहुत बड़ा तीर मारा कि रोजे में सामान लेने के लिए आप जा रहे हैं, बड़ा एहसान है। आप रोजे में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, माज अल्लाह बहुत बड़ा एहसान। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह तबारक व ताला खुद तौफीक दे देता। आप देखें गुज़िश्ता रमजान में कितनी गर्मी थी, हम सब ने रोजे रखे या नहीं रखे? उसी के करम से रखे, उसी ने रखवाया तो रख ली। जब इंसान हिम्मत करता है, नियत कर लेता है, खालिक कायनात अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, काम हो जाता। ये हमारा कमाल नहीं है कि हमने रोजे रखे, मौला तूने तौफीक दी तो हम कर सके। अगर तेरी तौफीक नहीं होती तो हम एक रोजा भी नहीं रख सकते। इसलिए रमजानुल मुबारक की असल तैयारी ये नहीं है कि हम चीजें जमा करके रख लें, वो अपनी जगह है, वो आप रखें। ऐसा नहीं कि आप कह देंगे जी हजरत ने मना कर दिया कि जी कोई चीज नहीं है, बेगम कहेंगे जी लेकर आए, नहीं नहीं तैयारी नहीं है बस मना है, ऐसी बात नहीं है। वो सारी चीजें हैं लेकिन उससे बढ़कर तैयारी क्या है कि हम अपनी रूहानियत को उजागर करें इस माह मुबारक में। और इसमें जिसमें हर अमल का सवाब दुगुना हो जाता, यानी नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर और फराइज का सवाब उससे भी ज्यादा। आम दिनों में नफिल पढ़ें तो नफिल का सवाब नफिल है, जो नफिल का सवाब है, लेकिन रमजान में जो नफिल पढ़ें तो सवाब नफिल के बराबर नहीं, फराइज के बराबर। कितना अल्लाह का करम। तो जब एक महीना हमें मिल रहा है तो हम इसको क्यों जाया करें? और फिर यह भी नहीं पता, क्या आप कहें चलो इस साल नहीं अगले साल कर लेंगे? ऐसा भी होता है ना, बहुत से काम, अरे नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, चलो इस साल रोजे नहीं रख रहे अगले साल रख लेंगे। आपको पता है अगले साल आप मौजूद रहेंगे? अगले साल तो दूर की बात है, अगले दिन का नहीं पता, अगला दिन भी दूर है, मैं कहता हूं अगली सात का नहीं पता। तो फिर जब इंसानी जिंदगी की बेसबाती का यह हाल है तो हम किस बात पर सोच रहे हैं कि हम अगले साल कर लेंगे? इसी साल कर लो, इसी साल कर लो। जब यह मौका अल्लाह ने जिंदगी में एक मरतबा दिया है तो यह सोचकर, मौला पता नहीं मैं अगले साल हूं या ना हूं, लिहाजा ये जो जो मुझे रातें, मुकद्दस बाबरकत रातें और मुकद्दस बाबरकत दिन मुझे मिल रहे हैं, मैं इसका एक लम्हा भी जाया नहीं करूंगा, मैं तेरी इताअत और इबादत में गुजारूं। आप अभी से नियत कर लें, सवाब अभी से शुरू हो गए, सवाब अभी से शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें इसलिए हमने बताई कि ये असल रूह की तैयारी है। आप रोजा रखेंगे, रूह में तकवियत पैदा होगी। आपने तरावी पढ़ी, रूह में तकवियत पैदा हुई। आपने नवाफिल पढ़े, रूह कवी हुई। आपने तिलावत कुरान किया, रूह कवी हुई। आपने इतिकाफ किया, रूह में ताकत पैदा हुई। तो ये महीना रूहानियत का मौसम बहार है, रूहानियत का मौसम बहार है। अपनी रूहानियत को उजागर करने का बेहतरीन मौका रमजानुल मुबारक का महीना। इसीलिए बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन रमजानुल मुबारक क्या, वो तो रजब से ही शुरू कर देते। रजब शुरू हुआ, उनका सिलसिला शुरू हो गया। तो जब ये माह मुबारक हमें जिंदगी में एक मरतबा फिर मैसर आ रहा है तो हमें चाहिए कि इन तमाम चीजों को हम अपने पेशे नजर रखें। तो इस्तकबाल रमजान असल ये है, वो नहीं है कि हम एक जलसा कर लें, लोगों को इकट्ठा कर लिया, जी रमजान मुबारक आ रहा है, हम इस्तकबाल कर रहे हैं, जैसे कि आप अखबारात में पढ़ते रहते हैं, फलां जगह इस्तकबाल रमजान के सिलसिले में जलसा हुआ, फलां जगह हुआ, फलां जगह हुआ। वो ठीक है, जलसा हो गया, लेकिन ये इस्तकबाल रमजान नहीं है कि हम जलसा करें। रमजान मुबारक का असल इस्तकबाल ये है कि हम अपनी रूहानी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि जब वो माह मुबारक आए, हमने नियत कर ली है कि हम पूरे रमजान के रोजे रखेंगे, हम तरावी पढ़ेंगे, अगर तौफीक हुई तो इतिकाफ भी करेंगे, हम तिलावत कुरान करेंगे, हम नवाफिल पढ़ेंगे, और एक लम्हा भी रमजान का लहवो लाभ में, खेल तमाशे में जाया नहीं करेंगे। असल तैयारी ये, और हकीकत यह है कि अगर आप अभी से, आपने नियत कर ली, सवाब अभी से शुरू हो गया, और फिर रमजान मुबारक आने के बाद इन तमाम चीजों पर इसी तरह अमल किया, इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। यह है असल तैयारी। तो इस्तकबाल रमजान असल यह है। तो ये सारी चीजें हमने आपके सामने बयान कर दी। नंबर एक रोजा, नंबर दो तरावी, नंबर तीन एतिकाफ, भूल गए, नंबर चार तिलावत कुरान, नंबर पांच शबे कदर में इबादत, जो मैंने बता दी तफसील, नवाफिल हो, तिलावत कुरान हो, जो भी हो, वो जाग कर पूरी रात गुजारें और उसमें वो करें। ये सारी चीजें ऐसी हैं, अभी से आप इसकी तैयारी करें और अपना शेड्यूल आप तय करें, आप कर सकते हैं। और रमजान में एक कलामे पाक मुकम्मल करना, पिछली दफा भी हमने ऐलान किया था और इस मरतबा भी हम ये ऐलान कर रहे हैं कि मुरीदीन में से जो कोई भी रमजान उल मुबारक में एक कलाम पाक मुकम्मल करेगा उसको हम एक तोहफा देंगे। पिछली दफा भी दिया था और इस दफा भी देंगे, लेकिन सही सही पढ़ना, बीच में गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल सही सही ईमानदारी के साथ। और उसमें कोई जल्दी भी नहीं है, पूरा महीना आपके पास, आराम से आप कर सकते, कोई मसला नहीं, बल्कि अगर चाहें तो आप दो या तीन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी एक की शर्त लगाई, वो भी सिर्फ इसलिए लगाई कि लोगों की मसरूफियात हैं, अपना कारोबार है, जॉब का सिलसिला है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जब आदमी टाइम निकालना चाहे निकाल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। और ये याद रखिए कि जब आदमी किसी भी नेक काम की नीयत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद शामिल हाल होती है। आप ये नहीं सोचे मैं कैसे करूंगा, आप नियत करके देख लीजिए मैं इंशाल्लाह एक कलाम पाक मुकम्मल करूंगा, आप देखिए अल्लाह ताला की तरफ से कैसी मदद होगी, किस तरह आपके लिए वक्त निकल आएगा, अल्लाह तबारक व ताला खुद आपके लिए वक्त मुहैया कर दे। इसकी नियत है, ये करना चाहता है, उसका तो इरशाद है, बंदा मेरी तरफ एक कदम आता है मैं चार कदम बढ़ता हूं, वो चलकर आता है मैं दौड़कर पहुंच जाता हूं। खालिक कायनात फरमा रहा, चलना दौड़ना ये खुदा की सिफत नहीं है, फिर वो क्यों कहता है कि मैं दौड़कर पहुंच जाता हूं? वो ये बताना चाहता है कि तुम एक कदम चलने की निस्बत मेरी तरफ बढ़ोगे, मैं चार कदम चलने की निस्बत अपनी तवज्जो तुम पर डाल दूं, तुम चलकर आने की निस्बत मेरी तरफ आओगे तो मैं दौड़कर पहुंच जाने की निस्बत अपना कुर्ब तुम्हें अता कर दूं। ये खालिक कायनात की शान। वो तो कहते हैं हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। तुम आगे बढ़कर तो देखो, उसके सामने अपनी पेशानी झुकाकर तो देखो कितनी रहमतें और बरकतें वो नाजिल करे। अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता, बहुत मोहब्बत करता, हदीस शरीफ के मुताबिक 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है खालिक कायनात। उसने तो पैदा किया है, वो खालिक है, मालिक है, राजिक है, वो मोहब्बत नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो जब बंदा उसकी तरफ बढ़ता है और उससे मोहब्बत करता है तो वो अपनी रहमतें बरकतें उस पर नाजिल फरमा देते। इसलिए हमें ये चाहिए कि अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम रखें। हमने हर चीज के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, तालीम के लिए वक्त है, खेल कूद के लिए वक्त है, कारोबार के लिए वक्त है, उसके लिए भी वक्त है जिसने तुम्हें पैदा किया, उसके लिए क्या वक्त है? कहते जी पांच नमाजें ये उसी के लिए हैं। हमने कहा पांच नमाजें हैं लेकिन ये तो उसने रखा है, तुमने क्या वक्त रखा उसके लिए? पांच नमाजें अगर वक्त उसके लिए है तो ये तो उसने रखा ना, तुमने क्या रखा? कभी रात को आखिरी पहर में उठकर वुजू करके रुजू इल्लाह होकर अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाकर और अपनी आंखों से दो आंसू बहाकर तो देखो कितनी रहमतें नाजिल करते, कितनी बरकतें तुम्हारे रिजक में शामिल करते। कभी तन्हाई में उसे पुकार कर तो देखो। एक बुजुर्ग तन्हा रहते थे, किसी ने कहा आपको डर नहीं लगता? आदमी अकेला होता है ना डरता है, सब हैं तो कोई मसला नहीं और अकेला हो कमरे में तो डर जाता है। उन्होंने कहा डर कैसा? कहने आप अकेले रहते हैं क्या? अकेला हुई नहीं, अकेला हूं तो डर लगेगा ना, मैं अकेला हुई नहीं, मेरा रब मेरे साथ, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है? और हकीकत है इंसान तन्हा भी हो तो तब भी रब साथ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिन वरीद, हम तुम्हारी शयरक से ज्यादा तुमसे करीब। तो जो शयरक से ज्यादा करीब हो उससे ज्यादा करीब कौन हो? तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हकीकत हाल यही है कि असल तैयारी रमजानुल मुबारक की यही है। दूसरी बात यह है कि अभी शबे बारात करीब है, यानी आज इतवार है तो आइंदा इतवार को शबे बारात, उसके लिए भी आप तैयारी करें। अब आप कहेंगे उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी यही रूहानी तैयारी है। असल में ये है ही रूहानी नशिस्त, तो हम इसमें सारी चीजें ऐसे ही बताते हैं कि जिसका ताल्लुक रूह से और रूहानियत से। शबे बारात रहमतों और बरकतों वाली रात है, पूरे साल की अमवात हयात यानी जिंदगी और मौत, तरक्की और तनजुली, जितने काम होने हैं और जितने नहीं होने सब इसी रात में लिखे जाएं। ऐसी रहमतों बरकतों वाली रात। तो इस रात में अगर 1000 मरतबा अस्तगफार पढ़ ली जाए गुनाहों की मगफिरत और माफी का, समझें आपके लिए ऐलान, 1000 मरतबा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कब्रस्तान जाना भी इसमें सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, उसकी तफसील है वो हम अलग बयान कर चुके हैं। तो वहां जाइए, अपने मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत कीजिए, उनकी कबूर पर फूल चढ़ाइए, ईसाले सवाब कीजिए और आने के बाद फिर इबादत में लग जाइए, पूरी रात इबादत में गुजारिए। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमात होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से दरगाह आलिया अशरफिया कायम हुई है उस वक्त से आज तक इन तमाम शुयूब में पूरी रात का इहतमाम होता है। तो आप जहां जहां शिरकत करना चाहें कर लें, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में यहीं पहुंच जाइए। यहां पर एक तो खसूसी नक्श तकसीम किए जाएंगे शबे बारात में, और दूसरे इज्तिमाई खसूसी दुआ हो, और दुआ जब ऐसे मकाम पर हो कि जहां बुजुर्गान दीन आराम फरमा हो तो उनकी निगाह करम उनका वसीला भी शामिल हाल होता है, और अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को जरूर जरूर कबूल करता। दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हैं और कुछ मकामात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें आपको हासिल होंगी, औकात भी और मकाम भी। वक्त भी कबूलियत का और मकाम भी कबूलियत का, और जिनके कदमों में बैठकर दुआ करेंगे वो भी मकबूल, तो फिर दुआ भी मकबूल। तो उसमें एक चीज तो ये करें कि 1000 दफा इस्तगफार पढ़ लें, और दूसरे ये कि जो हमने शबे कदर के लिए बताए थे कि 40 नफिल, अगर इससे ज्यादा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 40 नफिल जरूर पढ़ लें शबे बारात में, और उसके बाद इसके इसाले सवाब कर दें, और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में ये अहद करें कि मौला जो कुछ हो चुका वो हो चुका, जो मुझसे गलतियां हुई कसदन या सहवन जो भी हुई, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं कि आइंदा उसका इयादा नहीं करूं, और ये तेरा ही करम होगा कि मैं सीधी राह पर चलूं। जो कुछ मैं नेक काम कर रहा हूं सिर्फ तेरे कर्म से कर रहा हूं, तेरी तौफीक से। और हकीकत हाल यही है कि हमारे अंदर क्या ताकत है कि हम इबादत कर सके, उसने हिम्मत दी है तो हमने नमाज पढ़ी है, उसने तौफीक दी तो हमने तिलावत कुरान की। हिम्मत करना जरूरी है। अब इसमें भी लोग बड़ी चलाकी कर सकते हैं कि जी उसने हिम्मत ही नहीं दी तो हम कैसे करते, अल्लाह की तौफीक ही नहीं दी तो हम आ ही नहीं दरगाह शरीफ में, हम आ ही नहीं सके। ऐसी बात नहीं है, आप नियत करें वो आपकी मदद करे। नियत करना आपका काम है, हिम्मत करना आपका काम है, मदद करना ये खालिक कायनात का काम। जब वो देखता है कि बंदा अज़्म मुसम्मम करता है, इरादा कर लिया मजबूत कि मुझे जाना है, तमाम चीजें एक तरफ और मुझे यहां पर जाना पहुंचना है, जरूरी जाना है, फिर अल्लाह की तरफ से मदद शामिल हाल होती है, बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है। और इज्तिमाई इबादत का सवाब आप जानते हैं कि इनफरादी इबादत से बहुत ज्यादा है। हर 40 पर एक जन्नती है, जितना बड़ा मजमा होगा और सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की मगफिरत के लिए, माफी के लिए, दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, एक भी जन्नती है उसकी वजह से सब जन्नती, एक की दुआ कबूल हुई उसकी वजह से सबकी कबूल हो गई। इसलिए इज्तिमाई इबादत का सवाब है, इसमें आप लोग शिरकत करें। शबे बारात के इज्तिमा में पूरी रात का यहां पर इहतमाम है, और दूसरे दिन रोजा रखना भी जरूरी है, अगरचे वो फर्ज नहीं है, अगर कोई उजरे शरई हो तो आदमी छोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो उस दिन रोजा रखना ये बहुत सवाब का काम। तो अभी से नियत कर लें कि हम पूरी रात जागेंगे भी और दूसरे दिन इंशाअल्लाह ताला रोजा भी रखेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में जरूर जरूर कबूल फरमाए। ये चीजें हमने आपके सामने बयान कर दी, और आप कोशिश करें कि जो कुछ बयान किया गया है इस पर अमल करें और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बना, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हम सबको शबे बारात में और रमजान मुबारक के पूरे महीने में तमाम रातों में और दिन में इबादत करने की तौफीक अता फरमा, रमजान मुबारक के पूरे पूरे फ्यूज़ और बरकात से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔